ते वासुदेवाय श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 36 असंयात आत्मना योगो दुष्प्राप इति मे मते वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुम् उपायत अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। मेरे पीछे दोहराएंगे। जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। तात्पर्य पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। अगले श्लोक का भी अनुवाद पढ़ लेते हैं, श्लोक संख्या 37। कोई वॉलंटियर थोड़ा बच्चों को चुप कराएं या बाहर लेके जाएं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। हरे कृष्ण। आप में से कोई पहली बार आए हैं इस कार्यक्रम में, आज हाथ खड़ा कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका विशेष स्वागत इस शाम में, इस विशेष दिन, जो कि भगवान के एक बहुत ही महान भक्त जिन्हें हम सब भगवान शिव के नाम से जानते हैं उनके इस पर्व पे। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम पुराण कहता है कि नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, उस प्रकार से वैष्णवों में भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ यथा नाम शंभु शिव हैं। तो इसीलिए आज भगवान के एक विशेष भक्त का दिवस है। तो जो चर्चा है आज के कंटेस्ट में वो भी भक्त साधक के विषय में है, जिसकी बात की जा रही है कि जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ध्रुव मतलब निश्चित है। तो ये एक साप्ताहिक कार्यक्रम है जहां पर प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक सोमवार को भगवद गीता यथारूप की चर्चा की जाती है। तो प्रत्येक सप्ताह हम सब यहां एकत्रित होते हैं एक उद्देश्य को लेकर। किस उद्देश्य को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर आते हैं हम यहां पर? हाँ, भगवद गीता सुनने के लिए और ईश्वर को जानने के लिए। और कोई उद्देश्य भी? भगवान से संबंध बनाने के लिए। और कोई? भगवान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनने के लिए। और कुछ? भक्ति में बढ़ने के लिए। हाँ, ज्ञान लेने के लिए। हाँ, मटेरियलिस्टिक को कम करने के लिए, मतलब भौतिकता को कम करने के लिए। हाँ, अपने आप को जानने के लिए, प्रसाद पाने के लिए। मैं वेट कर रहा था ये आएगा अभी। ठीक है, अच्छा है, वो भी अच्छा है। वो भी बुरा नहीं है, भगवान का प्रसाद पाना भी सेवा होता है। तो प्रत्येक सप्ताह हम सब यहां एकत्रित होते हैं और हो सकता है हमारे यहां आने के कारण अनेक हो सकते हैं जैसा आपने बताया, लेकिन इस कार्यक्रम को आयोजित करने का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य इस कार्यक्रम को आयोजित करने का है कि हम सबकी आध्यात्मिक प्रगति हो सके, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। तो जैसा आपने कहा, ईश्वर को जानने के लिए, भगवद गीता सुनने के लिए, अपने आप को जानने के लिए, भगवान से संबंध बनाने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, ये सब कारण किससे संबंधित हैं? भगवान से संबंधित हैं। तो चाहे उसके नाम हम कुछ भी दें लेकिन उन सब का उद्देश्य एक ही है। तो जब आप भगवद गीता सुनेंगे, ईश्वर को जानेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, या अपने आप को जानेंगे, या प्रसाद पाएंगे, कोई भी कारण का नाम लेंगे, तो उसका उद्देश्य एक ही है कि ये सब अगर होगा या ये सब हम करेंगे तो उसका परिणाम क्या मिलेगा हमको? कि हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होगी, हमारी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी। तो एक प्रकार से हमारे यहां आने का एक ही मात्र उद्देश्य है, हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करें, प्रोग्रेस। तो इस उद्देश्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इसी उद्देश्य से हम सब यहां हैं। जैसे मानिए कि कोई बिजनेसमैन अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, तो वो क्या करता है उसकी प्रगति को बढ़ाने के लिए? उसके लिए हर क्षण वो चिंतित रहता है, उसके लिए हर क्षण वो इवैल्यूएट करता है, अपनी बैलेंस शीट देखता है, अपने प्रॉफिट लॉस को इवैल्यूएट करता है कि मेरी ये यूनिट कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, इसका क्या बैलेंस शीट है। वो हर सन उसका मन इस ओर लगा रहता है। तो एक प्रकार से वो सारे वो कारण करेगा जिससे उसका व्यापार बढ़े। या जैसे कोई एथलीट है, तो वो एथलीट अगर किसी कंपटीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, तो वो उस कंपटीशन के लिए जब प्रिपेयर कर रहा है तो वो हमेशा अपने रिकॉर्ड्स चेक करेगा। अब मैंने ये लैप कितने टाइम में पूरा किया, कितने कम सेकंड्स में, मेरी परफॉर्मेंस कितनी इंप्रूव हो रही है इस खाना खाने से, इस तरह की प्रैक्टिस करने से, इस तरह की जीवन शैली जीने से। तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी जीवन का वो उद्देश्य लेकर जीवन जी रहा है, तो उस उद्देश्य के प्रगतिशील होने के जो भी पैरामीटर्स हैं, जो भी सूचक हैं, वो उसके लिए हमेशा चिंतित रहेगा, उसके लिए हमेशा वो इवैल्यूएशन करता रहता है। तो उसी प्रकार से जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने का उद्देश्य है, यानी कि हमारी आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होना और आप सबके यहाँ आने का प्रत्येक सप्ताह, अब इतना कीमती समय आप दे रहे हैं, यहाँ आए हैं, यहाँ बैठे हैं, निश्चित रूप से यहाँ आने में और यहाँ से जाने में भी कुछ समय लगता है, इस प्रोग्राम में भी समय लगता है, तो 3-4 घंटे आप प्रत्येक सप्ताह यहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो ऐसे ही तो नहीं आ जाते हैं आप सब। तो कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर हम आए हैं, अब उसे नाम कुछ भी दे रहे हैं तो एक प्रकार से डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब हमारी आध्यात्मिक प्रगति को कराने वाला कारण होगा। तो जब इस उद्देश्य से हम यहाँ बैठे हैं तो क्या हमें प्रतिशन ये नहीं देखना चाहिए कि क्या मैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर रहा हूं या प्रगति नहीं कर रहा हूं, ऐसा देखना चाहिए, ठीक है कि नहीं? तो प्रत्येक क्षण प्रत्येक दिन हमको इस बात का इवैल्यूएशन करना चाहिए रात को सोने से पहले कि जो मैंने अपने जीवन का उद्देश्य बनाया है क्या मैं उस रास्ते में प्रगति कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, क्या मैं उस प्रगतिशील हूं या नहीं हूं। तो अब प्रश्न शायद आपका ये हो सकता है कि अगर ये उद्देश्य है हमारे इस कार्यक्रम का, आपके यहां आने का, कि हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील हों, तो क्या पैरामीटर है, क्या मापदंड है जिसके अनुसार हम इस बात को चेक कर सकते हैं कि क्या हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील हैं या फिर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील नहीं है। कुछ ना कुछ तो ऐसा सूचक होना चाहिए ना जिसे देखकर हम चेक कर पाए कि क्या हम प्रोग्रेस कर पा रहे हैं स्पिरिचुअल लाइफ में या हम प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इस बात का हमको उत्तर देते हैं भगवद गीता में अपने पर्पस में। प्रभुपाद जी कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर, एक साधक अध्यात्मवादी के लिए ये जानना कि कैसे वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कितना कर पा रहा है या कितना नहीं कर पा रहा है, ये इस बात से पता चलेगा कि उसकी कॉन्शियस, उसकी चेतना कितनी कृष्ण में लगी है या कृष्ण में नहीं लगी है। तो जितना हम कृष्ण के बारे में सोच पा रहे हैं, जितना हम कृष्ण का चिंतन स्मरण कर पा रहे हैं, ये दिखाएगा कि हम कितना अधिक आध्यात्मिक जीवन में प्रगतिशील हैं। लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति में हम देखेंगे तो इस वर्तमान परिस्थिति के अंदर अधिकतर हम देखेंगे तो हम सबके लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष है प्रतिक्षण, कि प्रतिक्षण चाहे हम चाहते भी हो कृष्ण का चिंतन करना, लेकिन इच्छा हो, लेकिन इच्छा होने के बावजूद भी हम अधिकतर किस चिंतन में हुए हैं। इस जगत में दो ही चीजें हैं, एक तरफ कृष्ण और दूसरी तरफ माया। तो किसका अधिक चिंतन कर पा रहे हैं हम? माया का। तो प्रभुपाद जी ने यही कहा कि एक तो बात है कि हम कितना कृष्ण का अधिक चिंतन कर पा रहे हैं और दूसरी बात ये कि कितना कम माया का चिंतन कर रहे हैं। इन दोनों से पता चलेगा कि हम अपने जीवन के उद्देश्य की ओर प्रगतिशील हैं या फिर उस उद्देश्य के लिए प्रगतिशील नहीं हैं। इन दोनों कारणों से हम इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में अगर हम देखेंगे अपने जीवन में झांक कर गहराई से, तो हम स्पॉन्टेनियसली स्वाभाविकता सिर्फ कॉन्शियस तो हैं एक वस्तु के लिए, और वो क्या है? शरीर, ये बॉडी। प्रतिक्षण हम इस देह के लिए चिंतित रहते हैं, प्रतिक्षण हम कॉन्शियस रहते हैं इस शरीर के लिए। हमारे विचार इस बात को सिद्ध कर सकते हैं, कैसे? कि हम प्रतिक्षण सोचते हैं या विचार आते हैं मन में रह रहे के, अब मेरा शरीर थक गया है, अब शाम हो गई है, ये मेरा बॉडी अब टायर्ड है, अब मेरे शरीर को भूख लग रही है, या अब मुझे अपने शरीर को संवारना है, सजाना है, या वो मेरे शरीर को देख रहा है और मैं उसके शरीर को देख रहा हूं। तो अनेक प्रकार से इस प्रकार की विचारधारा हम में रहती है। तो ये क्या दिखाता है? कि हम सब वर्तमान परिस्थिति में बॉडीली कॉन्शियस हैं, जिसे कहते हैं देहात्म बुद्धि। तो ऐसी अवस्था में हम प्रतिक्षण मन और शरीर इन दोनों का ही चिंतन कर रहे हैं। या जैसे अब मंदिर भी आए हैं तो मंदिर आके राधा पारसार्थी, ललिता विशाखा, सीताराम लक्ष्मण हनुमान और गौर निताय का जब दर्शन भी करते हैं, कई लोग प्रतिदिन आके भी दर्शन करते हैं, तो क्या सोचते हैं उस समय भगवान के विग्रह के सामने खड़े होकर? क्या विचार आता है कि पिछली बार आए थे तो ज्यादा अच्छा श्रृंगार था, या इस बार ज्यादा अच्छा श्रृंगार है पिछली बार से, या आज मेरे फेवरेट कलर का ड्रेस पहना है, इस बार अच्छा वाला रंग पहना है, भगवान अच्छे लग रहे हैं आज? तो इस प्रकार के विचार भगवान के विग्रह के सामने भी आकर रहते हैं हमारे, तो वो भी क्या दिखाते हैं? हम बॉडीली कॉन्शियस हैं, हम इस देहात्म बुद्धि से आच्छादित हैं। तो जब ये प्रश्न आता है कि इस मन में चिंतन हो किसका रहा है, कृष्ण का या कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया का, किसके चिंतन में हम अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवतम पुराण में नारद जी युधिष्ठिर महाराज को जब ये चर्चा करते हैं, उसमें चर्चा आती है शिशुपाल की। तो शिशुपाल के चरित्र का एक सबसे बड़ा गुण था कि वो बचपन से ही, जब से उन्होंने जन्म लिया, वो कृष्ण से द्वेष करते थे। अब आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने का क्या सूचक है? अभी डिस्कस किया हमने, क्या सूचक है किसका? कृष्ण का। कृष्ण का अधिक जो चिंतन कर रहा है वो प्रगतिशील है, ठीक है? तो अधिक जो कृष्ण का चिंतन करता है वो भक्ति में प्रोग्रेसिव है, इस बात को स्वीकार करते हैं आप सब? जी, धन्यवाद। तो अब शिशुपाल बचपन से कृष्ण का चिंतन करते थे, कृष्ण के बारे में सोचते थे, बचपन से कृष्ण को गाली देते थे, और बिना कृष्ण के बारे वो एक क्षण नहीं रह पाते थे। तो शिशुपाल तो भगवान के महान भक्त हो गए, नहीं कि हाँ हो गए ना, सबसे बड़े भक्त, क्योंकि वो हर क्षण चिंतन कर रहे हैं कृष्ण। लेकिन कैसा है वो, फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है? हाँ, अनफेवरेबल है, अगेंस्ट है, प्रतिकूल है। तो क्या ये कृष्ण की भक्ति कहलाएगा? हाँ, एक प्रकार से देखेंगे तो दो समय हमको सबसे ज्यादा रिमेम्बरेंस रहता है। एक तो जब हम किसी से शुद्ध प्रेम करते हो, एक कंडीशन तो ये होगा, प्योर लव, और दूसरा कंडीशन जिस समय हम किसी से शुद्ध द्वेष करते हो, प्योर एनवियसनेस हो जहां पर। इन दो स्टेज के अंदर सबसे हाईएस्ट रिमेम्बरेंस रहता है किसी व्यक्ति के बारे में, इन दोनों परिस्थिति में। तो शिशुपाल कौन सी स्टेज पे थे? हाँ, शुद्ध द्वेष की अवस्था में। तो शुद्ध द्वेष की अवस्था में भी वो कृष्ण का प्रतिशन चिंतन कर पा रहे थे, प्रतिशन वो चिंतन कर पा रहे थे। और नारद जी युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि शिशुपाल मुझसे ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो कृष्ण का चिंतन सबसे ज्यादा कर पा रहे हैं, सबसे ज्यादा कर पाए, और मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो शिशुपाल मुझसे बेहतर होगा। तो ये नारद जी का कहना है, जो हर समय कृष्ण का गुणगान करते हैं। तो हमें क्या कहना चाहिए अपने बारे में फिर? हमें अपने बारे में फिर क्या सोचना चाहिए? तो इस प्रकार से हम हर समय अगर देखेंगे तो हम बॉडीली कॉन्शियस हैं, और हमें पहुंचना कौन सी अवस्था में है? कृष्ण भावना की ओर, कि हम हर समय कृष्ण भावना भावित रह सकें। तो ये हमारे जीवन का एक वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि हम ये दूसरे अध्याय में पढ़कर आए, जिसमें अर्जुन संजय कहते हैं अर्जुन की परिस्थितियों को देखते हुए कि अर्जुन किस प्रकार से युद्ध के मैदान में थे, और वो कहते हैं तम तथा कृपया विष्टम अश्रु पूरेण कुलेक्षणम विषदंतिम इदम वाक्या उवाचा मधुसूदना तम तथा कृपा विष्टम अश्रु पूर्ण आकुलेक्षणम। कि अर्जुन की आंखें कैसी हैं? अश्रु पूरित, विषाद के अंदर हैं, और वो विषाद की अवस्था में अश्रु पूरित दृष्टि से युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं। तो एक प्रकार से देखेंगे हम सब इस भौतिक जगत में रहते हुए अश्रु पूरित नेत्रों के साथ ही हैं, चाहे हमारे पास कुछ है या कुछ नहीं है, दोनों ही अवस्थाओं में हम सब विषाद का जीवन ही जी रहे हैं। क्योंकि इस भौतिक जगत में की अगर परिभाषा देनी हो तो तीन शब्दों में दी जा सकती है, लैमेंटेशन, लैमेंटेशन एंड लैमेंटेशन। इसके अलावा इस भौतिक जगत में और कुछ नहीं है, सिर्फ विषाद, विषाद और विषाद। अब धृतराष्ट्र इस बात को जानते थे कि क्या ये युद्ध कौन से मैदान में हो रहा था, धर्म क्षेत्रे, एक धर्म के स्थान में कुरुक्षेत्रे, वो था कुरुक्षेत्र के स्थान पे। और धृतराष्ट्र को सबसे बड़ी चिंता क्या थी कि ये कौन से स्थान में है, धर्म के स्थान पे हो रहा है, एक पुण्य स्थान पे युद्ध हो रहा है। और जब पुण्य स्थान पे युद्ध हो रहा है तो पांडव क्या है, वो धर्म परायण है, तो हो सकता है धृतराष्ट्र की चिंता कि ये निर्णय निश्चित रूप से हो सकता है किसकी फेवर में जाएगा, पांडवों की फेवर में, क्योंकि एक ऐसे स्थान पे हो रहा है जिस स्थान पे मेरे पुत्र जो कि दुर्बुद्धि दुर्योधन उसके अनफेवर में ये निर्णय चला जाएगा। क्योंकि दुर्योधन किसका अनुशीलन करता था, अधर्म का, और पांडव धर्म का, कृष्ण का अनुशीलन करते थे। तो एक प्रकार से देखा जाए, शुद्ध असुर की परिभाषा देनी हो तो वो दुर्योधन की अवस्था थी। दुर्योधन वो शुद्ध असुर की अवस्था में, क्योंकि दुर्योधन कहते हैं कृष्ण को, जानामि अहम् धर्मा, मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन पालन नहीं कर सकता। ना जानामि अहम् धर्मा, तो वो कहते हैं मैं धर्म को जानता हूं लेकिन पालन नहीं कर सकता, और अधर्म को भी जानता हूं लेकिन उसको छोड़ नहीं सकता। तो ये है शुद्ध असुर का अवस्था कि नहीं, वो धर्म को जानते हुए उसका पालन नहीं कर पा रहा और अधर्म को जानते हुए उसे नहीं छोड़ पा रहा। तो उसी प्रकार से आज की मॉडर्न सोसाइटी भी इसी प्रकार से है ना, कि लोग जानते हैं जीवन के लिए क्या श्रेयकर है, क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसका अनुशीलन नहीं कर पा रहे, और क्या अच्छा नहीं है जानते हुए भी उसके पीछे भाग रहे हैं कि नहीं, उसके पीछे अपने जीवन का अत्यधिक समय, शक्ति और प्रत्येक विचार इन्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए तो भौतिकतावाद का जीवन, मटेरियलिस्टिक लाइफ का मतलब क्या है, इस अवस्था के अंदर पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये एक प्रकार से हमको समझ नहीं आता है। इसमें अगर भेद करने के लिए कह दिया जाए कि क्या पुण्य है क्या पाप है, वो समझ में नहीं आता। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब 1965 में गए न्यूयॉर्क के अंदर, इस अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना करी उन्होंने, तो प्रभुपाद जी ने पश्चिमी लोगों को जब चार निषेध बताए कि जुआ नहीं खेलना, अवैध संबंध नहीं बनाना, मांसाहार नहीं करना और किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना, तो प्रभुपाद ने बताया उनको कि ये चार नियम अगर आप पालन नहीं करते, इन निषेधों को पालन नहीं करते, तो ये चार धर्म के स्तंभों को तोड़ने के समान है, जैसे श्रीमद् भागवतम पुराण इसका विवरण देती है। तो पश्चिमी जो प्रभुपाद के शिष्य बने वो कहते हैं कि हम बड़े आश्चर्यचकित थे कि हमारे जीवन की आयु निकल गई काफी, 15-20-25 साल, लेकिन हमें तो किसी ने ये बताया ही नहीं कभी कि ये सारे कार्य पाप के कार्य हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है ना, क्योंकि हम भारत देश में रहते हैं जहां पर कल्चर है, जहां पर ट्रेडिशन है। ये भारत देश एक ऐसा देश है कि जहां पर आप भगवान को भूलना भी चाहें तो नहीं भूल सकते। इस भारत देश में अगर सच्चा नास्तिक 100% ट्रू एथिस्ट ढूंढना हो तो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है इस भारत देश में सच्चा नास्तिक ढूंढना, क्योंकि आप ना चाहते वो भी भगवान के संपर्क में आ जाओगे। बीड़ी भी पीते हैं तो उसका नाम होता है गणेश बीड़ी, बार का नाम होता है सुदामा बार। तो ना चाहते हुए भी आप भगवान के संपर्क में आ जाते हैं। ये भारत देश एक ऐसा देश है, लेकिन जब हम पश्चिमी देशों की बात करते हैं और वहां का ट्रेडिशन, वहां के कल्चर की बात करते हैं, तो कुछ भी कल्चर नहीं है, कुछ सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है। तो वो लोग कहते हैं जो प्रभुपाद के शिष्य बने कि हम बड़े आश्चर्यचकित थे कि किसी ने हमें आज तक ये नहीं बताया, आज तक हमें ये नहीं बताया कि हम जन्म से ये सब कर रहे थे, जन्म से बाय फोर्स। अब मानिए किसी का जन्म ऐसे परिवार में हो जहां मांसाहार किया जाता है, तो उस संतान को क्या पता मांसाहार अच्छा है या बुरा है, जो माता पिता खिलाएंगे वो खाएगा, तो बचपन से ही वो पाप में लिप्त हो गया ना, वो अज्ञानता में कर रहा है लेकिन कर रहा है। वो माता पिता को नशा करता हुआ देखता है प्रतिदिन, तो वो जानता है कि हाँ ये पार्ट ऑफ लाइफ है, हमें भी ऐसा करना है। तो बचपन से ही बच्चा उस प्रकार के वातावरण में जब आया वो जीवात्मा, तो वो उस पाप में लिप्त हो गया ना। तो उसी प्रकार से ये शिष्य कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये पाप के स्तंभ है, और आश्चर्य की बात, महान आश्चर्य की बात, किसी ने हमें ये बताया तक नहीं। और वो प्रभुपाद को कहते हैं कि प्रभुपाद आपने हमें ये बताया, आपने हमें ये शुद्ध भक्ति का संदेश दिया, आपने हमें देखा क्या ऐसा कि आप हमें ये देने के लिए यहां आ गए। एक प्रकार से देखा जाए तो कलयुग की अगर परिभाषा देनी हो तो कलयुग का मतलब है कि जो सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होना चाहिए वो कलयुग में सबसे तुच्छ हो जाता है, और जो सबसे तुच्छ होना चाहिए, इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए, कलयुग का मतलब है वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए। और आज प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में अगर आप झांके देखेंगे तो यही नजर आएगा, जो सब इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए उसको हम सबसे टॉप प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ में, और जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी लाइफ में उसको हम लग्जरी में रखते हैं, ऑप्शनल रखते हैं। जैसे कि अगर आप देखें स्पिरिचुअल लाइफ की अगर आप बात करें, आध्यात्मिक जीवन की बात करें, तो आध्यात्मिक जीवन वैदिक संस्कृति से आती है। ये वैदिक संस्कृति शब्द की बात करें तो आज स्कूल कॉलेज में संस्कृत शब्द, जो संस्कृत भाषा है, लैंग्वेज है, ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आप लें या ना लें, है ना। स्कूल में जाए कॉलेज में जाए तो कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। तो संस्कृत भाषा आज एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो संस्कृत भाषा कहां से आई? वैदिक संस्कृति से आई। तो ये वैदिक संस्कृति आज हमारी लाइफ के लिए ऑप्शनल है। क्यों ऑप्शनल है? क्योंकि इसको अगर मैं अपनाऊं या ना अपनाऊं तो मेरी ब्रेड एंड बटर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आज हम यह स्वीकार करते हैं इस बात को कि यह भगवद गीता मेरी लाइफ में क्या चेंज लेकर आएगी, मेरे पैसे कमाने पर, मेरे बिजनेस, मेरे जॉब, मेरे करियर का इससे क्या लिंक। लेकिन अब मैं स्कूल में जाता हूं, कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं जब हम प्रचार करते हैं भक्त लोग, तो वो पूछते हैं आप भगवद गीता की बात कर रहे हैं, ये मैन मेड है, हम क्यों बिलीव करें इसके ऊपर, क्यों हम इसके ऊपर विश्वास करें, हम इसे क्यों एब्सोल्यूट माने, सत्य परम सत्य माने। तो कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं, लेकिन वो लोग जो ये प्रश्न करते हैं वो अपने स्कूल और कॉलेजेस में अपने साइंस टीचर पे क्वेश्चन नहीं करते कभी, कि जो आप बता रहे हो कि सिर्फ बायोलॉजिस्ट कहते हैं 5000 स्पीशीज ऑफ लाइफ है, तो बायोलॉजिस्ट ने आज तक 5000 स्पीशीज ऑफ लाइफ सब देखी नहीं है, लेकिन पढ़ा रहे हैं टेक्स्ट बुक्स के अंदर, वो पढ़ा रहे हैं कि इस क्रिएशन की शुरुआत बिग बैंग गैसेस के धमाके से हुई, लेकिन आज ये प्रूफ किया नहीं जा सकता। आज साइंस कह रही है कि लाइफ कम्स फ्रॉम केमिकल्स, लेकिन आज वो साइंस ये दे नहीं पा रही है। तो टेक्स्ट बुक में जो आज हम पढ़ रहे हैं कि होमोसीपियन 30,000 साल पहले आया, जो आज का एडवांस ह्यूमन है, लेकिन आज साइंस को 1,00,000 साल पुराना फॉसिल मिल रहा है ह्यूमन का, तो आज वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है वो थ्योरी डार्विन की, इवोल्यूशन की। तो आज साइंस से हम क्वेश्चन नहीं करेगा, वो स्टूडेंट अपने प्रोफेसर से, अपने टीचर से ये क्वेश्चन नहीं करेगा, आप हमें पढ़ा रहे हैं होमोसीपियन 30,000 साल पहले आया, लेकिन आज आर्कियोलॉजिस्ट ढूंढ रहे हैं 1,00,000 साल पुराने ह्यूमन फॉसिल्स, सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस। वो क्वेश्चन नहीं करेगा, क्यों? वहां पे उसकी डिग्री स्टेक पे है। मैंने क्वेश्चन किया तो मुझे बाहर निकाल देंगे स्कूल से, कॉलेज से, मुझको डिग्री नहीं मिलेगा, और डिग्री नहीं मिलेगा तो मेरे करियर का क्या होगा, और मेरा करियर नहीं होगा तो मेरे पैसे का क्या होगा, मेरा पैसा नहीं होगा तो मेरी लाइफ की फैसिलिटीज, सुख सुविधा का क्या होगा। तो चाहे वो मुझे गलत भी पढ़ाए तो आई विल बिलीव दिस। लेकिन जब भगवद गीता की हम बात करते हैं तो भगवद गीता पे जब बात आती है कृष्ण की, तो यहां पर आई कैन क्वेश्चन, बिकॉज इससे मेरी ब्रेड एंड बटर अफेक्टेड नहीं है, इससे मेरी मटीरियल लाइफ में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो आई कैन क्वेश्चन, आई कैन काउंटर, मैं इसे अपनी ऑप्शनल लिस्ट में रख सकता हूं कि मैं इसे विश्वास करूं या ना करूं, इससे अंतर पड़ने वाला क्या है मेरे जीवन में। तो ऐसा ही है कि नहीं आज की सिविलाइजेशन में? तो जो हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी लाइफ का होना चाहिए वो आज हमारे लिए क्या है? ऑप्शनल। लेकिन वो मटीरियल लाइफ जो ऑप्शनल होना चाहिए वो आज हमारी लाइफ की टॉप प्रायोरिटी है। तो यही कलयुग की एक परिभाषा है कि जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो आज इनसिग्निफिकेंट बना पड़ा है, और जो इनसिग्निफिकेंट होना चाहिए वो सबसे इंपॉर्टेंट बना पड़ा है। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में, यहां आपके मेरे राइट साइड पे, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण का युगल रूप है, ज्वाइंट फॉर्म जो आज से 500 वर्ष से लगभग कुछ समय पहले पूर्व आया वेस्ट बंगाल में, तो भगवान अपने कृष्ण ने भगवत गीता दिया सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा अहम तम सर्व पापे भ्यो मोक्ष इशामि माशु, की सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी पूर्ण शरणागति स्वीकार करो, कंप्लीट सरेंडर। कृष्ण का मतलब वो बिल्कुल पूर्ण चीज एक्सेप्ट करते हैं। वहां पर अगर 99% भी सरेंडर है तो भगवान की दृष्टि कहां रहेगी, जो 1% हमने अपने लिए रखा है वो 99% को नहीं देखने वाले, वो उस 1% को देखेंगे जहां जो हमने अपने लिए संजो रखा है। तो वो तो कहकर चले गए, अब कृष्ण का क्या जाता है, उन्होंने कहा हो तो चले गए, अब हमें करना तो हमको है, तो हम करें कैसे, तो स्वयं भगवान इसको कर कर दिखाते हैं एक भक्त के रूप में। तो जो चैतन्य महाप्रभु थे वो 500 वर्ष पूर्व एक भक्त के रूप में आकर उसे कर कर दिखा रहे हैं कि इस भगवत गीता को प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से अपने जीवन में जिया कैसे जाए, कैसे हम अपने जीवन के अंदर इसका पालन करें। अब वो चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि वो व्यक्ति जो स्वयं अपने धाम को त्याग कर इस भौतिक जगत में आ रहा है, ये भौतिक जगत क्या है, यहां पर हमारे लिए इस भौतिक जगत में कांच के टुकड़े भी बड़े महत्वपूर्ण है, लेकिन वास्तव में इनका कोई मूल्य नहीं। ये पांच तत्वों से हमारा क्या संबंध, जीवात्मा जो कि पूर्णता आध्यात्मिक सच्चित आनंद का बना है, वो रह रहा है इस निरानंद के शरीर में, इस निरानंद के शरीर से वो निरानंद के पदार्थों से आनंद पाने की प्रतिशन चेष्टा और कोशिश में लगा है, और उसका प्रत्येक प्रयास विफलता में बदलता जा रहा है। ये हम सबका अनुभव है कि जीवन भर के अंदर जितनी भी हम योजनाएं बना रहे हैं, जितने भी हम सफलता के प्लान्स बना रहे हैं, वो एक एक करके फ्लॉप ही होते जा रहे हैं और वो हमें फ्रस्ट्रेशन की तरफ धकेलते जा रहे हैं। तो हम सब चाहते तो हैं खुश होना, लेकिन हम सबका अनुभव है कि इस जगत के अंदर चाहे राजा हो या रंग हो, प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के दुखों का जीवन जी रहा है, क्योंकि यही इस भौतिक जगत का स्वभाव है। इस भौतिक जगत का जो प्रोग्राम है कृष्ण ने वो इसीलिए बनाया है कि हम प्रश्न करें अंत में आके, अथवा तो ब्रह्म जिज्ञासा भगवान के विषय में अपने विषय के अंदर। तो वो चैतन्य महाप्रभु जो सबसे इंपॉर्टेंट होने चाहिए हमारे लिए, लेकिन आज वो इंपॉर्टेंट नहीं, कोई जानता ही नहीं उनको, सबसे बड़ी बात तो ये। ज्यादातर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो एक डिवोटी के रूप में, एक भक्त के रूप में, एक भक्ति मूवमेंट उन्होंने चला, इतना बस समझ में आता है हिस्ट्री के अंदर, इससे ज्यादा कोई जानता ही नहीं। वो सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो इंद्रिय तृप्ति का जीवन, इसीलिए भगवान ऋषभ देव पांचवें अध्याय में कहते हैं नायम देह देह भाजम निरलोके, कि ये जो मनुष्य जीवन है इसका वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए, कष्टान कामान, कष्टों का जीवन जीने के लिए मनुष्य का जन्म नहीं हुआ है, ये मनुष्य योनि कष्टों का जीवन जीने के लिए नहीं बनी है। विड भोजान ये सुअर और कुत्ते और सुअरों की तरह जीवन जीने के लिए नहीं बना है। एक प्रकार से ये भौतिक जगत बिल्कुल वैसा ही है, आज आहार निद्रा भय मैथुन इन्हीं चार कामों में हम पूरा जीवन का शक्ति समय साधन पूरी तरह से निवेश करते जा रहे हैं। तो एक प्रकार से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। अगर आप देखें, अब सुअर के लिए क्या महत्वपूर्ण है, मल, उसके लिए सबसे बेस्ट फूड क्या है, मल। तो इसीलिए सुअर ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां गंदगी होती है, जहां मल पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसीलिए आप देखेंगे सुअर रूरल एरियाज में, विलेजेस में ज्यादा पाए जाएंगे, सिटीज में, शहरों में नहीं होते, वहां स्वच्छता रहती है। और सुअर क्या एक विशेषता है, वो हमेशा पृथ्वी की ओर देखता है, उसकी नाक हमेशा नीचे की ओर रहती है, कभी ऊपर नहीं देखता आकाश की ओर। क्यों? उसका भोजन सबसे ज्यादा पर्याप्त मात्रा में नीचे ही मिलता है, वो गंदगी। तो वो सुअर को अगर सर्वोत्तम पदार्थ भी समझाया जाए तो वो समझ में नहीं आता है। जैसे अगर एक प्रकार से मनुष्य जीवन से सुअर के जीवन की तुलना की जाए तो कभी जो अधिक खाता हो तो उसे कहते हैं ना एक सुअर की तरह है, जब जो बिल्कुल बुद्धि नहीं है तो उसको क्या कहते हैं, गधे की तरह है ना, किसी को उल्लू की तरह कहते हैं, मूर्खता है। तो उसमें तो पशुओं से तुलना करते हैं ना मनुष्य जीवन में, कुछ योग्यताएं अगर हम देखते हैं विशेष किसी व्यक्ति के अंदर, तो उसी प्रकार से देव योनि देवी देवता जब वो एक दूसरे को गाली देते हैं तो पता क्या कहते हैं, हे मनुष्य, वो मनुष्य कहते हैं एक दूसरे को जब वो गाली देते हैं। और इसीलिए आप देखेंगे भागवतम पुराण अगर आप पढ़ेंगे, देवी देवता अपराध करते हैं तो उन्हें पृथ्वी लोक पे भेजा जाता है अपराध करने के बाद, कि जाओ यहां रहो मनुष्यों के बीच में, ये तुम्हारी सजा है। तो ये कोई श्रेष्ठ जीवन नहीं है जिसे हम श्रेष्ठ मान के जीवन जी रहे हैं। तो जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है आज वो सबसे तुच्छ होना चाहिए, और जो महत्वपूर्ण होना चाहिए वो आज तुच्छ बना हुआ है, यानी कि वो इंद्रिय तृप्ति का जीवन। तो इसीलिए ये भगवत गीता का जो संदेश है ये बड़ा वैज्ञानिक संदेश है, जो हमें ये समझाने आया कि कृष्ण जिस प्रकार से अर्जुन को युद्ध के मैदान में समझा रहे थे कि तुम चिंता कर रहे हो उन लोगों के लिए जो मेरी व्यवस्था के द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तो इनको मारने के लिए मैंने सिर्फ तुम्हें यहां खड़ा किया है श्रेय लेने के लिए, क्योंकि मेरे यहां आने का उद्देश्य क्या है, धर्म की स्थापना करना। तो एक प्रकार से हे अर्जुन, तुम अगर ये कार्य नहीं करो तो मेरी योजना आने की विफल कर रहे हो तुम तो यहां आने की। तो भगवान इस प्रकार से वो संदेश दे रहे हैं कि अर्जुन के माध्यम से भगवान उस संदेश की स्थापना कर रहे हैं जो आज मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश होना चाहिए। लेकिन जब आप अर्जुन के चरित्र को देखेंगे तो ऐसा महान चरित्र देखने को मिलता है कि आज जो ऐसे चरित्र, ऐसे करैक्टर ढूंढने को नहीं मिलेंगे। इतना आदर्श, इतना आदर्श। अब क्या क्या नहीं किया दुर्योधन ने अर्जुन के साथ, क्या क्या नहीं किया आप पढ़ते जाइए महाभारत में, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एक के बाद ऐसी ऐसी घटनाएं कि अगर कोई हमारे जैसा हो अर्जुन की जगह तो दुर्योधन का नाम सुनते ही खून उबलना शुरू हो जाएगा, जो कार्य दुर्योधन ने अर्जुन के लिए किए। लेकिन अब आप देखिए, एक के बाद एक ऐसी दुर्घटनाएं, द्रौपदी का वस्त्र हरण, उनको मारने के लिए एक प्रकार से हर क्षण दुर्योधन क्या प्रयास कर रहा था, साय की भांति, मृत्यु की भांति पांडवों के पीछे लगा था कि कब अवसर मिले और इन्हें मार दिया जाए। लेकिन अब अर्जुन के जीवन को अगर आप ध्यान से देखें और अर्जुन के जीवन को समझने की कोशिश करें तो वो अर्जुन अब जब युद्ध के मैदान में खड़े हैं सैन्योर उभयोर मध्य, वो कृष्ण को कहते हैं कि मेरे रथ को स्थापित कर दो दोनों सेनाओं के मध्य में। दोनों सेनाओं के मध्य में जब उनके रथ को स्थापित किया जाता है तो वो अर्जुन जब देखते हैं सामने के योद्धाओं को और अर्जुन दुर्योधन को देखते हैं तो अर्जुन ब्लेम किसको करते हैं, अगर आप भगवद गीता का चैप्टर 1 चैप्टर 2 ध्यान से पढ़ेंगे तो अर्जुन हर कार्य के लिए, इस युद्ध के लिए भी अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं, मेरे कारण ये हो रहा है। पांडव अपने आप को ब्लेम कर रहे हैं कि ये युद्ध का कारण मैं हूं। तो एक प्रकार से कल्प्रेट पे वो ब्लेम ना करके स्वयं पे ब्लेम कर रहे हैं। कलयुग की क्वालिटी क्या है, गलती चाहे हमारी भी हो तो तब भी उंगली दूसरे पे उठती है। इसलिए आपने देखा हमारे हरे कृष्ण वालों की जप माला है, जप थाला देखा, उंगली बाहर रखते हैं, इसीलिए उपयोगी ना करना पड़े। लेकिन अर्जुन को अगर आप देखेंगे तो ऐसा करेक्टर जो ब्लेम दुर्योधन या कौरवों को ना देकर, जो कि होना चाहिए, वो स्वयं को दे रहा है। अब एक कलयुग का एक बड़ा ही विशेष गुण है कि यहां पर लोग एक दूसरे से जुड़ते भी हैं तो अपने स्वार्थों के लिए ही जुड़ते हैं, उसके लाभ के लिए नहीं। तो ये आसुरी शक्तियां प्रत्येक युग में विद्यमान थी। अगर आप दुर्योधन की सेना को देखेंगे तो दुर्योधन की सेना के अंदर जितने भी लोग दुर्योधन की तरफ से युद्ध कर रहे थे, जितने भी राजा युद्ध कर रहे थे, वो दुर्योधन से प्रेम के वश युद्ध नहीं कर रहे थे। दुर्योधन के साथ वो अनेक भौतिक महत्वाकांक्षाएं लेकर आए थे, वो जानते थे। इसीलिए आप देखेंगे कि इस कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में 64 करोड़ लोग मारे गए, 64 करोड़ योद्धा मारे गए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दुर्योधन की तरफ से लोग मरे, पांडवों की तरफ से भी लोग मरे, और सिर्फ 5 ही पांडव बचे पूरी पांडव सेना के अंदर, बाकी सब मारे गए। तो एक प्रकार से दोनों तरफ से हत्याएं हुई। तो दोनों तरफ से क्यों, आप कोई प्रश्न करेगा, पांडवों की तरफ से क्यों मरे, वहां तो कृष्ण थे और वो धर्म के लिए युद्ध कर रहे थे। तो चाहे हम भक्त के वेश में भी क्यों ना हो, आज कलयुग में ये लक्षण बड़े स्पष्ट रूप से नजर आता है, लेकिन हमारा मन जरूरी नहीं, वो भी तो शरीर भक्त हो सकता है लेकिन मन जरूरी नहीं भक्त हो। मन अनेक प्रकार के चिंतन में लगा हुआ हो सकता है, जैसे आज के श्लोक में पढ़ रहे हैं, मन को संयमित करना इतना आसान नहीं है। इससे पहले आपने पढ़ा पिछले श्लोकों के अंदर, बलवतम दृढ़म प्रमादी, किस प्रकार से कितना बलवान है। तो दोनों तरफ से आसुरी शक्तियां थी, इसीलिए दोनों तरफ लोग मारे गए, दोनों तरफ से। और दोनों तरफ से देवी शक्ति के लोग भी थे, यानी कि भक्त लोग भी थे। अब अगर आप देखेंगे गंगापुत्र भीम का उदाहरण, वो किस तरफ से युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन की तरफ से। द्रोण किस तरफ से युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन की तरफ से। अनेक भक्त भी थे दुर्योधन की तरफ, उसी प्रकार से अनेक असुर भी थे, असुर चेतना वाले जैसे लोग भी पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। तो दुर्योधन की तरफ से जो राजा आए वो जानते थे, प्रति भली भांति इस बात को जानते थे कि दुर्योधन में वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है, वो दुर्योधन में लीडरशिप क्वालिटीज नहीं है कि पूरे विश्व को एक साथ रख सके। ये हस्तिनापुर का शासन कोई एक स्टेट का शासन नहीं था, कोई एक कंट्री का शासन नहीं था, ये पूरे प्लैनेट की शासन की बात हो रही थी, ये पूरे प्लैनेट का शासन था। इसीलिए अगर आप देखेंगे आज भी विदेशों की भूमि में, ब्राजील में एक ऐसा स्थान है जहां पर हनुमान जी गए थे और उस स्थान का नाम हनुमान के नाम से है। आप अगर मिडल ईस्ट में जाएं तो मिस्र के अंदर एक ऐसा स्थान है जहां पर 60 वर्ष पुराना वैदिक टेम्पल है जिसमें सारी श्लोक वैदिक भाषा में लिखे हैं, और जो वहां पर जो इतिहास अगर पढ़े हैं तो वहां पर कोई हिंदू राजा हुआ करते थे कभी समय पर। तो पूरे विश्व भर के अंदर इस संस्कृति की कल्चर, इस वैदिक संस्कृति की जड़ें आपको प्राप्त मात्रा में पूरे विश्व में इसकी झरोके देखने को मिल जाते हैं। तो ये पूरे प्लैनेट का शासन का युद्ध हो रहा था। तो अनेक राजा दुर्योधन की ओर से भी युद्ध के लिए आए थे। वो किस लिए आए थे ये जानते हुए कि दुर्योधन में वो लीडरशिप क्वालिटीज नहीं कि इस पूरे शासन को संभाल सके। तो निश्चित रूप से अगर दुर्योधन जीता तो हमें दुर्योधन की मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये जीत जाए, पांडव मर जाए तो फिर क्या होगा, हम अपने अपने हिस्से दुर्योधन से मांगी लेंगे। तो कॉपरेशन भी किस बेस पे है आज कलयुग के अंदर अगर देखेंगे तो, मैं आपसे कॉपरेट करता हूं, आप मुझसे कॉपरेट कीजिए, क्योंकि आप मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प करते हैं और मैं आपकी सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प करूंगा। सो वी कम टूगेदर, हम दोनों एक साथ आ जाएं। आज रिलेशनशिप की भी यही हालत है। आप एक परिवार में भी एक पति पत्नी या एक भाई भाई या किसी भी रिलेशन की भी नाम ले लें, वो एक दूसरे से कॉपरेशन तभी तक है जब तक हम एक दूसरे की सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। और जैसे ही हम एक दूसरे की इंद्रिय तृप्ति में विघ्न डालें तो आज देखें डिवोर्स केसेस किस स्टीप हाई बढ़ते जा रहे हैं, कितनी तीव्रता से प्रगति करते जा रहे हैं। अमेरिका में कहते हैं कि सक्सेसफुल मैरिज का मतलब है कि पति पत्नी चर्च से एक साथ बाहर आ जाएं आफ्टर मैरिज, सो दैट इज सक्सेसफुल मैरिज। हिजोलिनाथ देवा मेरे स्वामी बता रहे थे एक दिन, वो कह रहे थे कि उनके अमेरिका में अमेरिका के भक्त हैं, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, वो कह रहे थे उनके एक शिष्य अमेरिका में रहते हैं, कहते हैं उनकी बेटी उनके माता पिता को आके बोलते हैं पापा हम सब लोगों से अलग कैसे हैं। तो उनके पापा ने बोला कैसे बेटे हम लोगों से अलग हैं, वो कहते हैं मेरी क्लास में पापा जितने भी बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स साथ नहीं रहते, हम सब साथ क्यों रहते हैं। तो ये कल्चर आज भारतवर्ष में भी प्रवेश कर रहा है। निश्चित रूप से जब हम कंज्यूमरिस्ट कल्चर को लेकर आ रहे हैं तो उसके फायदे देख रहे हैं, तो उसके बाय प्रोडक्ट भी हमारी लाइफ में निश्चित रूप से आएंगे। आप कॉइन के हेड पार्ट को चाहो और टेल पार्ट को ना चाहो ये संभव नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी शेडो के बगैर नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से इसके पॉजिटिव पार्ट को हम एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन इसके नेगेटिव पार्ट का भुगतान भी हमें ही करना होगा। और वो आज हम अपने सब जीवन के अंदर देख पा रहे हैं कि जितनी भी कठिनाइयां आज हमारे जीवन में आ रही हैं 90% वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है, 90% वो लाइफस्टाइल रिलेटेड है। इसीलिए आप देखो 50 साल पहले लोगों का जीवन बड़ा सात्विक, बड़ा सिंपल, नो टेक्नोलॉजी, नो इकोनॉमी, नो सोसाइटी, कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कितने लोग सेटिस्फाइड, संतोष, कंटेंटेड थे जो भी अपने जीवन में उन्हें भाग्य से प्राप्त था। आज हमारी कठिनाई क्या है, हम अपने भाग्य से ज्यादा रिजल्ट चाहते हैं। लोग सोचते हैं मैं 8 घंटे काम करता हूं मुझे इतना मिलता है, अगर मैं 12 घंटे काम करूंगा तो इतना अधिक पा लूंगा, या 15 घंटे काम करूंगा तो इतना, या 20 घंटे काम करूंगा तो इतना। इसीलिए आज का जो कॉर्पोरेट कल्चर है उसमें लॉयलिटी की परिभाषा क्या है, आप कितनी ज्यादा देर ऑफिस में बैठते हैं, ये कॉर्पोरेट कल्चर में लॉयलिटी देखी जाती है। आप क्या दे रहे हैं वो समझ में नहीं आ रहा किसी को, लेकिन आप कितना बैठ रहे हैं ऑफिस में वो इंपॉर्टेंट है ज्यादा। तो आज हम अपने भाग्य से ज्यादा प्राप्त करने का संघर्ष कर रहे हैं और ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। लोग क्वेश्चन करते हैं कई बार कि भगवत गीता कह रही है कि जीवन सीमित होना चाहिए, विजडम का मतलब क्या है कि जीवन का संतुलन होना, कि 8 घंटे काम करने के लिए काफी है, उसमें धन उपार्जन करें। भगवत गीता का संदेश कोई वैराग्य के जीवन के लिए और नहीं है। कृष्ण ये नहीं कहते कि सिर्फ वैरागी मुझे प्राप्त कर सकता है, ब्रह्मचारी मुझे, सन्यासी प्राप्त कर सकता है। वो कहते हैं भक्त्या माम अभिजानंती, किसी भी वर्ण किसी भी आश्रम हो सकते हैं। कृष्ण स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे, अर्जुन स्वयं गृहस्थ आश्रम में थे, तो आप सब भी अधिकतर लोग जो यहां बैठे हैं वो गृहस्थ आश्रम में ही हैं। तो भगवद गीता का संदेश हम सबके लिए है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ कुछ एक सेक्ट के लोगों के लिए है जो रिनाउंस ऑर्डर ऑफ लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं है। तो आज हम सोचते हैं कि हम भाग्य से ज्यादा प्राप्त कर लेंगे, वो संभव नहीं है। तो जीवन संतुलित होना अति आवश्यक है। अगर हम अपने मन को भी सीमित रखना चाहते हैं, आज मन भी अशांत क्यों है, भाग दौड़ चूहे की, ये रैट रेस की लाइफ चल रही है। इन चूहों की दौड़ में अगर जीत भी गए तो क्या लायन थोड़ी बन जाएंगे, रैट ही रहने वाले हैं ना, ये चूहे ही कहलाएंगे इन चूहों की दौड़ में जीतने के बाद भी। तो उस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो 8 घंटे बहुत है काम करने के लिए, लेकिन कई बार प्रश्न करते हैं, आप बोलते हैं 8 घंटे या भगवद गीता का संदेश 8 घंटे काम करने को कहता है, मैंने 12 घंटे काम किया, मैं अपनी दुकान पे बैठा तो 12वें घंटे मैंने मेरे ग्राहक ने आके मुझे इतना पैसा दिया और उसका मुझे इतना प्रॉफिट हुआ। तो जब कृष्ण देखते हैं या भगवान देखते हैं इस बात को कि हम आवश्यकता से अधिक संघर्ष कर रहे हैं उसे प्राप्त करने के लिए जो हमारे भाग्य में प्रदान ही नहीं किया गया, तो भगवान क्या करते हैं, जो 8 घंटे में मिलना था उसे 15 घंटे में स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, उतना फिर 15 घंटे में मिलेगा, और 15वें घंटे के लास्ट मोमेंट में कस्टमर को भेजेंगे प्रूव करने के लिए, देखो तुम बैठे इसलिए मिला तुमको, है ना। तो भाग्य से ज्यादा प्राप्त नहीं हो सकता, 1 इंच खुशी नहीं और 1 इंच सुख नहीं, इस बात को बड़ा समझ लेना चाहिए हमको। तो जो 8 घंटे हैं हमारे जीवन में काम के लिए वो होने चाहिए, उसमें काम होना चाहिए ऑनेस्टली रिलीजियसली, लेकिन बाकी समय क्वालिटी टाइम फैमिली को, क्वालिटी टाइम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को भी देना चाहिए। कहते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, आज सोशल शब्द तो कहीं रहा ही नहीं, क्योंकि टाइम ही नहीं जीवन के लिए, पैसे की भागदौड़ में इतना काम कर रहे हैं सुबह से शाम भाग रहे हैं, तो मैन इज अ एनिमल ही हो गया आज तो, पशु की तरह ही जीवन जी रहा है, गधे की तरह, गधे से भी कंपैरिजन करो तो गधा भी नाराज हो जाता है, उसको वो भी अपराध समझ लेता है, मनुष्य भी इतना ज्यादा काम करता है वो तो। आज की ऐसी परिस्थिति का हम ये जीवन जी रहे हैं, तो जब हम ऐसे चरित्रों के बारे में सुनते हैं या ऐसे शास्त्रों से प्रत्येक सप्ताह आके सुनते हैं, ऐसे भक्तों के बीच में बैठकर इस सुंदर पवित्र वातावरण में जो कि भगवान की भक्ति से परिपूर्ण है, इस मंदिर का एक एक क्षण एक एक इंच स्पेस हमें ये विश्वास दिलाने के लिए, इस और प्रगति दिलाने के लिए है कि ये कृष्ण भावनामृत, ये भगवद गीता जी जा सकती है, ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, यू कैन लिव दिस, इतना व्यवहारिक है, और एकमात्र ऐसा शास्त्र जो भगवान ने स्वयं बोला है, और बाकी शास्त्र भगवान के बारे में बोले गए हैं, ये भगवान के द्वारा बोला गया एकमात्र शास्त्र है। तो हमारे यहां आने का प्रमुख उद्देश्य क्या है, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना। तो इस विचार के साथ हमें हमेशा रहना चाहिए, इस प्रकार से हमें हमेशा इवैल्यूएट करना चाहिए कि ये हरे कृष्ण मंत्र का जप करना, भगवद गीता पढ़ना, भक्तों का संग करना, भगवान के अर्चा विग्रह का दर्शन करना, ये कृष्ण भावनामृत की प्रोसेस बहुत सरल है, बहुत इजी है। इसीलिए कठिनाई ये कलयुग इतनी जटिलता का जीवन है कि जो सरल चीज हो वो समझ में नहीं आती हमको, अगर यही चीज मुश्किल से समझाई जाए तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी, क्योंकि इतना जटिल जीवन जीने के हम आदि हो गए, इतनी कॉम्प्लेक्स लाइफ लीड करने के इजी हो गए। भगवान ने प्रोसेस हमें बहुत सरलता से दिया है, इट इज वेरी इजी। तो अगर हम इसे स्वीकार करें अपनाएं तो मन को नियंत्रित करना बहुत सरल है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए मंत्रा मेडिटेशन, मंत्र जप, श्रवण ध्यान की विधि, ये क्या है, ये इस मन को नियंत्रित करने की विधि है, जो इस भगवद गीता का सार है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप की गौर प्रेम आनंद। What next question? कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं। व्यक्तिगत इंडिविजुअल व्यष्टि आत्मा कह रहे हैं ना, इंडिविजुअल लिविंग। यस प्लीज। विश्व युद्ध है ना, सब पूरे विश्व भर से योद्धा आए हैं, लेकिन ये सिर्फ क्षत्रिय पॉपुलेशन है, इसमें लेडीज नहीं है, बच्चे नहीं है, वैश्या शूद्रा ब्राह्मणस नहीं है। हाँ जी, वो पहले क्षत्रिय थे, आपको मालूम है उनका स्टोरी, लेकिन उसके बाद ब्राह्मण आए ये, आप जानते हैं विश्वामित्र मुनि से किस प्रकार से इन्होंने वो द्रुपद और राजा का इनका जो शत्रुता थी, आधा राजे मांगा, वो पता सुना आप? तो ब्राह्मण जो मिलिट्री ट्रेनर्स थे, ये ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते थे, मिलिट्री ट्रेनर्स जितने भी थे ये वैदिक संस्कृति के अंदर, तो ब्राह्मणिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते, क्योंकि जो भी समाज को ज्ञान दे रहा था वो ब्राह्मण वर्ग ही था, तो चाहे वो मिलिट्री ट्रेनर हो या एक सामान्य प्रशिक्षक हो, वो ब्राह्मण वर्ग था। तो ये ब्राह्मण का कार्य है कि वो प्रशिक्षण देता है, और ब्राह्मण प्रशिक्षण प्राप्त करता है शास्त्रों से और भगवान से, इसीलिए ब्राह्मण प्रत्येक अवस्था में डिटैच्ड रहता था। अगर आप 1000 वर्ष पूर्व जाएं, चाणक्य पंडित की बात आती है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, ये भारतवर्ष की बात है ना। तो चाणक्य पंडित क्या थे? ब्राह्मण, लेकिन वो एडवाइस किसको कर रहे थे? क्षत्रिया को, और पूरा शासन स्वयं चला रहे थे क्षत्रिय की भांति, लेकिन क्षत्रिय के माध्यम से। तो रोल्स देख सकते हैं ना इस प्रकार से। हाँ जी, उस टाइम पे, अब मेरे पास वो आबादी का काउंट नहीं है क्या थी, तो ये प्रश्न का उत्तर कैसे दिया जाए कि आबादी क्या थी। लेकिन आज आप गणना करते हैं इसलिए आपको पता है, उस समय की गणना के रिकॉर्ड्स नहीं है ना हमारे पास, कैसे कंपैरिजन किया जाए। तो आज कहा जाता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, तो इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है इस बात से कि कैसे समझा जाए आज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। क्योंकि उस समय अगर आप देखो, उस समय क्या 50 साल पहले भी जाओ, तो एक घर में 10-10 बच्चे होते थे कि नहीं, है ना? सुना है आप सबने, देखा भी होगा शायद। आज एक ही होता है, कई बार एक भी नहीं होता, ऐसा ही जीवन है ना आजकल। तो फिर कैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर सकता है? तो कई चीजें प्रश्न खड़ा करती हैं, आज जो हम सुन रहे हैं देख रहे हैं उस पर कैसे बिलीव किया जाए। निश्चित रूप से जब आप इन स्क्रिप्चर्स को देखेंगे, जो कि मिथोलॉजी नहीं हो सकता कभी भी, ये वास्तविकता है। कुरुक्षेत्र आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, वृंदावन आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, अयोध्या आज भी एग्जिस्ट कर रहा है, द्वारका के अवशेष आज भी मिल रहे हैं हमें, तो कैसे इसे मिथोलॉजी समझें? वो प्लेसेस आज भी हैं जो इन स्क्रिप्चर्स में मेंशनड हैं, और इसकी बातें आज भी ट्रू प्रूव हो रही हैं हमारी लाइफ के लिए। आज आप देखिए ना, वैदिक नॉलेज में एस्ट्रोलॉजी पे आज पूरी दुनिया बिलीव करती है, भारत ही नहीं पूरे विश्व भर में एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव किया जाता है। आज वास्तुशास्त्र में आज पूरी दुनिया बिलीव कर रही है। काम शास्त्र हाइएस्ट सोल्ड लिटरेचर है आज पूरे वर्ल्ड के अंदर। तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये सब कहां से आ रहे हैं? आयुर्वेदा, आज पूरा विश्व आयुर्वेद के पीछे पागल है, एलोपैथी और हम सब चीजों को छोड़ के आयुर्वेद के पीछे आज जा रहे हैं। तो ये सब कहां से आ रही हैं? ये ब्रांचेस वैदिक नॉलेज की ब्रांचेस हैं, तो हम उसे तो एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसे तो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं ना जो वेदास से आ रहा है। तो फिर इस भगवदगीता को जो वेदास से आता है उसे क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते? तो मतलब जो मेरी सेंस ग्रेटिफिकेशन में हेल्प करेगा उसे मैं स्वीकार करूंगा, आज का ये हमारा थॉट प्रोसेस है। इसके लिए मुझे कुछ त्याग करना पड़ेगा, तपस्या करना पड़ेगा, तो इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा, है ना? यस, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ऐसे ही समय में नींद क्यों आती है। हाँ, जैसे किसी को प्रसाद पाते नींद आती है, पाते पाते सो गया। देखा कभी किसी को? आज प्रसाद हम और जाएंगे ना, आप नोटिस कीजिएगा, सब जाग जाते हैं। मुझे कह रहे थे एक भक्त, कहते हैं ये इस्कॉन के अंदर ना जैसे ही बोलते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सब सो जाते हैं, और जैसे ही आते हैं महाप्रसादे गोविंदे, सब जाग जाते हैं। तो एक मंत्र सुलाने वाला, दूसरा जगाने वाला। तो जहां रुचि है ना, जो हमारे इंटरेस्ट एरियाज हैं, वहां कभी नींद नहीं आती। मैं बच्चों को देखता हूं, स्पेशली सीए स्टूडेंट्स को, इतना उनको पढ़ना होता है, रात में दिन पढ़ते हैं 16-16 घंटा, 18-18 घंटा। मैं पूछता हूं आपको नींद नहीं आता? कहते नहीं आता, इंटरेस्ट है। क्यों? डिग्री मिलेगा तो पैसा मिलेगा। आज हम देखते हैं लोगों को ऑफिस जाते हैं जिस ड्रेस में, नेक्स्ट डे उस ड्रेस में वापस आते हैं। उनसे पूछो नींद नहीं आना, प्रेजेंटेशन था बहुत इंपॉर्टेंट, बॉस को देना था अभी होने वाला एक डील, तो अब नींद नहीं आता। जहां हमारे इंटरेस्ट एरिया था वहां नींद नहीं आता हमको। अब लोग क्रिकेट मैच देखते हैं ना रात को, डे नाइट वाला, रात भर जाके, कोई वर्ल्ड कप फुटबॉल आ रहा होता है रात भर देखते हैं, नहीं देखते, वहां नींद आता है? नहीं आता। मैं कई कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को जानता हूं जो रात भर प्रोग्रामिंग करते हैं, बैठ के दिन रात करते हैं, उनको नींद नहीं आता। डेडलाइन है इस समय तक ये देना है बिजनेस करके, तो इंटरेस्ट एरिया है तो नींद नहीं आता, और जहां इंटरेस्ट नहीं है स्वाभाविक रूप से वहां नींद आता है। जैसे रूप गोस्वामी ने बड़े प्रचलित उदाहरण में कहा है, आप सबने सुना होगा कि एक जॉन्डिस का मरीज, जिसको हम अगर शुगर केन कैंडी, उसे गन्ने का रस पिलाएं तो उसको वो बिटर कड़वा लगता है, लेकिन वही उस जॉन्डिस के मरीज का इलाज है वो शुगर केन का जो रस है, वो पीता रहेगा धीरे धीरे वो उसको वही मीठा लगना आरंभ होगा। तो इस अवस्था में नींद आ रही है, लेकिन अगर हम पढ़ते रहेंगे सुनते रहेंगे वो जैसे जैसे प्यूरिफिकेशन होगा, हरि नाम लेने से, भगवत गीता सुनने से, दर्शन करने से, प्रसाद पाने से, ये प्यूरिफिकेशन जिस जिस डिग्री तक बढ़ता जाएगा उस डिग्री तक हमारा स्पिरिचुअल लाइफ में इंटरेस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो अभी जिस डिग्री तक प्यूरिफिकेशन है उसी डिग्री तक इंटरेस्ट है हमारा। ठीक है, क्लियर है बात? हाँ जी, भगवत गीता का मतलब है भगवान के द्वारा गाया गया गीत। इट्स अ सॉन्ग विच वॉज संग बाय लॉर्ड, भगवत गीता। हाँ जी, हाँ, नोवेयर 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 नोवेयर, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ये गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है कहीं भी, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। कैसे कह सकते हैं कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक एग्जांपल दीजिए मुझे। आइडल वर्शिप वेदांत में नहीं है, क्या बात कर रहे हैं आप? आपने पढ़ा है सारे वेदांत को? तो हम यू से बड़े बड़े लोग की बात कर रहे हैं, हम तो यहाँ स्क्रिप्चर्स की बात कर रहे हैं। देखिए, हम यहाँ शास्त्रों की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल। यहाँ जो फिलॉसफी है वो भगवान के द्वारा दी गई है, सिंपल। श्योर भगवान थे? जीसस ने बाइबल में कहा है ना, आई एम सन ऑफ गॉड एंड माई गॉड हैज ए अबोर्ड वेयर देर इज नो डेथ, विच इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय सन, विच इज नॉट इल्यूमिनेटेड बाय मून, विच हैज बीन इल्यूमिनेटेड बाय हिज बॉडीली एफल्जेंस। जीसस ने कहा है ना भगवद बाइबल के अंदर। सिमिलरली कृष्ण भगवद गीता में यही बात कह रहे हैं कि मेरे धाम को ना सूर्य प्रकाशित करता है ना चंद्र प्रकाशित करता है, वो मेरी देह की कांति से प्रकाशित होता है। कहां है कॉन्ट्राडिक्शन? इट्स द सेम थिंग। हाँ जी, हाँ हाँ, इस्लाम के हिसाब से अल्लाह का घर है मोहम्मद, कहा गया है कुरान में अल्लाह का एक घर है, और कृष्ण कह रहे हैं तद्धाम परमम पमा, मेरा घर है, मेरा धाम है। कहां है कॉन्ट्राडिक्शन? श्री कृष्ण को भगवान मानेंगे। कृष्ण शब्द का अर्थ है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। तो भगवान क्या है? सर्व आकर्षक। भगवान के जो नाम हैं वो उनकी क्वालिटीज के ऊपर आधारित हैं। ऐसे नहीं जैसे हम रख लेते चिंटू बिंटू पंकी, ऐसे नहीं, उनके नाम उनके गुणों के ऊपर आधारित है। राम शब्द का मतलब है जो सबसे ज्यादा आनंद देता है, और अल्लाह शब्द का मतलब है जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अब आप कहते हो मेरे भगवान अल्लाह नहीं है, तो क्या मतलब आपके भगवान शक्तिशाली नहीं है? जिहोवा शब्द का मतलब है जो सबसे ज्यादा कृपालु है। आपको मेरे भगवान जिहोवा नहीं है तो इसका मतलब आपके भगवान कृपालु नहीं है क्या? ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं? एक ही व्यक्ति के अलग अलग गुणों की ओर। हाँ, अगर आप इन टोटो 100% उसको फॉलो करेंगे तो एक ही जगह वो इशारा कर रहे हैं, एक ही जगह एक ही स्थान की ओर इशारा कर रहे हैं वो। अगर आप 100% इन टोटो उसको फॉलो करें तो आपकी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं बात को? भगवान का बच्चे को ये भी बताना पड़ता है तुम्हारा पिता, उसको नहीं पता होता मेरा पिता है ये, तो फिर पहले कौन आया, पिता आया कि एहसास आया? फेथ आया। तो अरे पिता तो पहले से ही है ना, पिता ना हो तो बच्चा कैसे आएगा? अलग किस्म से क्यों? जो आप कह रहे हैं मैं वही बात को प्रस्तुत कर रहा हूँ आप ही के शब्दों में। मेरा प्रश्न है आपसे कि बच्चे को बताया जाता है कि ये पिता है या बच्चा जानता है ये मेरा पिता है? और भगवान भी हमारी इंद्रियों के सामने है, आप नहीं देख पा रहे लेकिन हम देख पा रहे हैं। हम आपको ऐसी विधि दे रहे हैं जिसके द्वारा आप भी देख पाएंगे, भगवान भी आपके सामने है। तो आप नहीं देख पा रहे, आप ये कंक्लूड नहीं कर सकते कि भगवान नहीं है। आपने स्विट्जरलैंड देखा? आप बिलीव करते हैं स्विट्जरलैंड में? क्यों, आपने तो देखा नहीं उसे? ठीक है ना, सुना है किसी से जिसने देखा है, राइट? सिमिलरली जिसने देखा है वो हमें बता रहा है, वो हमें बता रहा है जिसने देखा है, ठीक है।
हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, धन्यवाद आपका।
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।